भक्ति प्रेम राधा तत्व कृष्ण तत्व प्रेम तत्व विलास तत्व सब कुछ को प्रकाश कर, ऊपर से नहीं किसी को जानने दिया, उनको भी नहीं जानने दिया और प्रकाश करते। ऐसे ही ब्रह्मा जी को जैसे हुआ है हमारे हृदय में, आपने ये प्रकाश, मैं तो इन चीजों को जानता नहीं। अच्छा सचमुच में ये विशाखा सखी यदि थे तो ये जानते थे कि नहीं? जानते तो थे, किंतु योग माया के प्रभाव से कृष्ण अपनी भगवत्ता को, राधा अपने को राधनी शक्ति और गोपियां अपने को वैसी, ये योग माया के प्रभाव से नहीं जानती। कृष्ण भी नहीं जानते कि मैं भगवान, इसी से उनकी लीला हो कि नित्य लीला नहीं होती। उसी तरह से विशाखा जी हैं रारमन, किंतु उस समय तक योग माया के प्रभाव से उनका यह भाव अच्छा भी। महाप्रभु जी की कृपा से फिर योग माया वहां से थोड़ी सी हट गई और उनका भाव यहाँ पर कह रहे हैं, अब वो समझ गए इनके बोली से, चाली से, ढंग से और उनके प्रश्न पूछने के तरीके से वो समझ गए ये जो सामने जो सन्यासी हैं ये सन्यासी नहीं है, ये कोई ये कपट कपट सन्यासी है, ये धूर्त है वो, और ये धूर्त और कोई नहीं, ये कृष्ण ही स्वयं है, वो समझ गए। और चतुराई से ये प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, पूछने के ढंग से ही पता लग जाता है ये कौन व्यक्ति, तो वो समझ गए, उन्होंने इसको संशय के रूप में प्रकाश किया। प्रभु हमारे हृदय में एक संशय आ गया, जैसे क्या संशय आ गया, तो वो कहते हैं कि देखिए संशय आपके सामने प्रकाश करना, आप कृपा करके उस संशय को आप पहले देख लू तुम्हार सन्यासी स्वरूप, यदि तुम्हारा देखी मुई श्याम गोपुर, पहले जब मैं आया यहाँ आप मिले तो आपको एक ब्राह्मण सन्यासी तेजस्वी सन्यासी के रूप में आपको हमने देखा, किंतु इन प्रश्नों के बाद में अब मैं जो आपको देख रहा हूँ अब तो सन्यासी रूप मुझको आपके अंदर में दिखता नहीं। महाप्रभु जी किंतु उस समय में सन्यासी वेश में ही है, किंतु ये कारण अब मैं आपको सन्यासी के रूप में ही अब देख रहा हूं श्याम गोप रूप, गोप रूप में जो श्याम अब उसी शांति में देख रहा हूं, हाथों में बंसी है, सिर पर मोर मुकुट है, पीतांबर की काछनी है, यहाँ पर पीतांबर लहरा रहा है, होठों पर मुरली है, वो ऐसा सुंदर मैं रूप आपका देख रहा हूं। कुमार सन्मुखे देखी कांचन पंचाली, उसे सामने कह रहे हैं किंतु आप कृष्ण ही हैं, कृष्ण के रूप में गोप के रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं अपने बीच में और आपके बीच में, आपके ऊपर में एक कोई छाया है, वो छाया क्या है, कांचन पंचाली का, पंचाली के माने पुतल, एक सोने की पंचालिका माने मूर्ति है, वो सोने की मूर्ति कौन है, तार गौर कांति तुम्हार सर्व कांति घाटा, वो इतनी सुंदरी है जिसका हद नहीं। कृष्ण बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, वे मदन मोहन है, इतनी सुंदर है कोटि कोटि मदन कामदेव लज्जित हो जाए उनके रूप को देखकर, किंतु श्रीमती राधिका जी और सुंदर हैं, जो वो भी उन पर मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि आपके सामने ही मैं देखता हूं, एक गौर कांति से भरी एक सोने की पंचालिका मूर्ति है, बहुत ही अद्भुत सुंदर। कहां से प्रकट देखी ईश्वर वंशी वदन, उसमें मैं प्रकट देखा कि आप वंशी वदन कृष्ण ही है, श्याम है, और वो श्यामा नाम की किंतु है कैसी, सोने की मूर्ति जैसे होती है कैसे सोना, जो पिघलाया गया हो अभी तुरंत थल थल एकदम पीला का भाव, गौर वर्ण का भाव, उसे आपकी सारी कांति समस्त सारे अंग पैरों से पैर वस्तकथल से वस्तकथल, शीर से मुखारविंद से मुखारविंद, हाथों से हाथ, समस्त अंग ही उसके जो किशोरी है श्यामा जी है गौरी, उस गौरी के अंगों से और उसकी कांति से आप तहां से प्रकट देखी स्वंशी वदन, उसमें मैं देख रहा हूं प्रारमानंद कह रहे हैं उस सुंदर गौर कांति वाली राधिका के पीछे सोने की जो मूर्ति है उसके पीछे वंशी वदन है, नव किशोर नटवर वंशी धारी है, बहुत ही सुंदर नाना भावे चंचलता है कमल नयन, और आप जो श्याम सुंदर हैं आपके नयन कैसे हैं, चंचल कमल के समान नयन है, नयनों में कमल जैसी समस्त माधुरी माया है उनमें, और चंचल है मानो इसलिए चंचल जैसे हिरणी का बच्चा छोटा सा हिरणी चल चल नेत्रों से इधर उधर देखती है ऐसे दीप होकर, तो यहाँ पर मानो किसी को खोज रहे हैं इसलिए चल चल इधर देख रहे हैं इधर देख रहे हैं, यही मत नंद कुमार देखी है चमत्कार। अकपट कह प्रभु कारण निहार, मैं ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा, क्यों नहीं, कृष्ण लीला में उन्होंने कृष्ण को देखा है और राधा जी को भी देखा है, किंतु ऐसा रूप नहीं कभी देखा जो दोनों मिलकर के एक हो गए हों और श्याम कांति भक्त गई हो गौर कांति के द्वारा। कोई चीज किसी चीज से भक्ति है कब, कब ढकेगी, जिसका प्रभाव अधिक होगा वो दूसरे को ढक लेगा, और शक्ति ही शक्तिमान को प्रकाशित करती है, राधा जी कृष्ण के स्वरूप को और जो कुछ उनकी भगवत्ता है राधा की ही कारण है, इसलिए राधा जी की कांति से उनकी कांति श्याम कांति भर करके एक ऐसे अपूर्व दोनों का मिलन, उधर नीलमणि नील जैसी आभा इधर स्वर्ण कांति, दोनों मिलकर के एक तीसरी कोई अद्भुत कांति बन गई, इसी का नाम है रसराज महाभाव। ने पूछा जिसे ये कैसे हुआ बतलाइए, तो मैंने तो आपको श्याम के रूप में भी देखा है और आपकी श्यामा जी को भी देखा, किंतु ये अद्भुत ये दोनों का मिश्रण ये कैसे ये हुआ, बताइए आप कौन हैं। प्रभु कहे कृष्ण तुम्हार गाढ़ प्रेम है, तुम्हार स्वभाव यही ज्ञानी हो निश्चय, प्रेमेर प्रभाव यही ज्ञानी हो। महाप्रभु ने हंस दिया, ये तो हमारे भाव को समझ लिया कि मैं कौन हूं, मैं वही श्याम हूं, राधा जी के भाव और शांति को लेकर के आया हूं ये समझ गया, इसलिए थोड़ी सी उन्होंने मुस्कुरा दिया, ये चोरी की कलई खुल गई, इसलिए वो थोड़ा सा हंस दिए और कह रहे हैं मैं तो जो हूं तुम देख रहे हो, जो मैं ब्राह्मण सन्यासी हूं ब्रह्म सन्यासी हूं मैं तो वही, किंतु तुम्हारा कृष्ण के प्रति अगाध निष्ठा है, इसलिए तुम सर्वत्र जिधर ही देख रहे हो उधर श्याम 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 देख रहे हो। मैं बदला नहीं, हमारे अंदर में भी और जहां जहां तुम्हारा नेत्र पड़ा सबको तुम श्याम मई देख रहे हो, देख रहा है। केवल प्रेम का स्वभाव ऐसा होता है। महाभागवत देखे स्थावर जंगम जहां तहां तार श्री कृष्ण को पुष्पुरा स्थावर जंगम देखे ना देखे तारमूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव इसको साधारण रूप में एक ऐसी कहावत है कि चोर सबको चोर ही देखता है। काम का पसंति काम काम मायम जगत चोर सबको चोर ही देखे जितने देखेगा सभी चोर रहते हैं। और जो कामी पुरुष है वो सर्वत्र नारीमय काममय ये ऐसा जो जैसा है जाति रही भावना जैसी हरि मुहूर्त देखा वैसा ही देख लिया। तो इसमें जिसको जो देख रहा है उसकी ये ऐसी बात नहीं है, वो तो प्रेम जिसके प्रति हो जाता है जिसके प्रति भावना रहती है वैसा ही आदमी देखता है। जैसे रुक्मिणी सत्भामा कृष्ण के प्रेम में रो रही थी तो रात में उन्होंने देखा कि कुररी नाम का एक पक्षी भी विलाप कर रही, तो वो कुररी से पूछती हैं, अरे प्यारे सखी जैसे हमारे पति का वियोग हो गया तो तुम्हारे पति का जरूर वियोग होगा हो गया नहीं तो तुम रोती नहीं, तुम इतनी जब रो रही है तो जरूर तुम्हारा पति का वियोग होगा जैसे अपनी जैसी देखते। ठीक ऐसे ही भगवान का भजन करते 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 निष्ठा से रुचि आसक्ति भावावस्था अंत में प्रेम के प्रादुर्भाव होने पर ऐसा है। उत्तम महाभागवत प्रहलाद महाराज जी से आरंभ करके और उसके ऊपर वाले जितने भी वो ऐसा ही थे। कौन है तो ऐसा ही हो जाता है। कृष्ण प्रेम का नशा ऐसा चढ़ जाता है कि सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दर्शन। और यदि कोई राधा पक्ष कोई गोपी का भाव लेकर के भजन करता है तो वो कैसा देखेगा, सब राधा मय कृष्ण बोले सर्वत्र, जैसे ब्रह्मा ने सर्वत्र ही कृष्ण कृष्ण देखा, राधभू सुंदी जी ने राम मय सब जगत को देखा, सर्वत्र राम ही राम देखा, या पार्वती जी जी की कथा जो मैं कहता वो ऐसे ही एकदम राम 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 सर्वत्र थे। तो ये महाभागवत लोग भजन करते करते जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तो वो निष्ठा निश्चलता आ जाती ठीक है। इसके बाद में भजन करते 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 उसमें रुचि हो जाएगी, रुचि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आसक्ति होगी, यही आसक्ति पहले भजन में भजन के प्रति और फिर तब फिर भगवान की बड़ी इस पर दया हो जाती है, तब उस जगत से वो भाव उनके परिकरों में से इनके यहाँ छुटकी हो जाती, वह भाव इस जगत का कोई मन की कोई कल्पना नहीं है, जो मन की कल्पना से ऐसा हो जाएगा। अभी हम रोते हैं हंसते हैं मन की स्थिति के अनुसार, कोई मर गया तो रोते हैं, कोई बच्चा जन्म ले लिया तो खूब हंसते हैं, हंसने की बात होती है हंसते हैं रोने की बात होती है, अपने मन की ये सब भावना है। किंतु वह जो प्रेम है वो जगत की चीज नहीं है, भगवान के परिकरों में से यहाँ पर आदित होता होता तो वो यथार्थ भाव है। वह भाव उत्पन्न होने पर सर्वत्र ही अपने इष्ट देव की मूर्ति को देखेगा। प्रहलाद महाराज जी से पूछा कंस ने, अरे तू डरता नहीं है, तुमको आग में जलाया, तुमको विष खिलाया, पहाड़ों से गिराया, समुद्र में मैंने फेंकवा दिया, हाथियों के पैरों के नीचे दबाया, ऐसा कोई उपाय नहीं, सांपों से कटवाया, विष दे दिया, तू मरने ही रहा, तू तो देखते हैं कि अद्भुत व्यक्ति, तो तुमको इतना निर्भय तुम कैसे हो गया, तुम्हारा बल कहाँ है? तो उन्होंने कहा जो सबका बल है, जो सबका सहारा है, वह भी मेरा सहारा है, मैं उसी के बल से सर्वत्र निर्भय हूं। किसके? भगवान के बल से। और वो सब में है अंतर जाने के रूप में, कोई अनुभव करता है कोई करता नहीं। मैं तो उस प्रभु को सर्वत्र ही देखता हूं, समस्त जीवों में उस प्रभु को देखता हूं, और उस प्रभु में समस्त जीवों को दर्शन करता हूं। अभी ये श्लोक आएगा, सर्वभूतेषु यः पश्यत् भगवद्भावम् आत्मना भूतानि भगवत्तात्मन्येष भागवत। भजन करते करते भगवान की उपलब्धि, ये झूठ मूठ का कि कोई कल्पना नहीं है, जो भगवान है भजन करने से ऐसा होता है। पहली स्थिति में संदेह लोगों को रहता है, अच्छा भगवान का भजन करते हैं तो हमारा अमुक व्यक्ति क्यों मर गया, लोग ताना देंगे ये इतना भजन करने वाला या करने वाली, और उसका यह प्यारा व्यक्ति चला गया, ये कैसे हुआ क्यों, वो सब पूछा देगा। ये सब साधुता इत्यादि जितने सब पूछ ले, ये एक पेट पालन करने का, पैसा रोजगार करने का एक धंधा है, दूध मुख को संतना दी। तो अच्छा वो क्यों मर गए, वो क्यों मर गए, महात्मा जी जो सबको सांत्वना दे रहे थे जो भगवान, तो वो क्यों मर गए? अरे वो तो समझते नहीं है कि ये कपड़ा है, बुद्धिमत्ता यही है कि पुराना फटा होने पर उसको बदल दिया जाए, उनके समझ में ये कभी नहीं जाता। तो भगवत भक्त जो होता है, तो साधन करते 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 जब महाभागवत चला जाएगा, पहले कनिष्ठ अधिकारी, फिर मध्यम अधिकारी, फिर उत्तम अधिकारी, तो फिर वो निर्भय हो जाता है, मध्यम अधिकार से ही निर्भय होने लगता है। तब ये सांसारिक विपत्तियों के लिए और परिवर्तनों के लिए उसको कम फिकर चिंता कुछ भी नहीं होगा, एकदम स्थिर हो। जैसे भीष्म पितामह जी, व्यास जी, महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, बहुत तरह से लोग समझा रहे हैं, व्यास जी भी आए उनको समझाए, और भीष्म पितामह जी ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया और धृतराष्ट्र को भी बहुत समझाया, उनके तो नाती पर नाती अपने हैं ये लोग, पांडवों की समझाने की कोई जरूरत नहीं, वो तो समझेंगे, बहुत समझाया किंतु उन्होंने माना नहीं। जिस समय माना नहीं, और ये हमारे भीष्म पितामह जी अस्त्र लेकर के खड़े हो जाते, देखो ये तुम लोग क्या करता है, पांडवों को देना पड़ेगा, ये मेरा राज्य है, तो क्या होता, वो सबको ना को चने चबवा करके और उसी समय में सब कुछ उनको दे दे, कुछ लोग नहीं कर सकते थे, किंतु उन्होंने जानबूझ करके भी कुछ नहीं, बल्कि दुर्योधन की तरफ से भी लड़ा। ये महाभागवत व्यास जी अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, जब उनको तीन पुत्र भी दे दिए, विदुर, धृतराष्ट्र, पांडु और पांडु, तीन पुत्र भी तो अपनी दृष्टि से ही उनको दे दिया, उनको तो पुत्र था नहीं विचित्रवीर्य को, किंतु दे दिया। तो जो जन्म देने में संभव समर्थ है, इच्छा कर देते ना, अभी संपादे जाओ, अभी तुम मर जाते, सब दुर्योधन इत्यादि सब मर जाते, युद्ध इत्यादि सब अपने आप बंद हो जाता, सब काम हो जाता, किंतु अपनी योग विद्या का, अपनी शक्ति का उन्होंने प्रदर्शन, ये लोग जानते हैं जैसा कृष्ण भी स्वयं भगवान होकर के भी कुछ क्यों नहीं किया, इसमें जगत का कल्याण था, वो समझते हैं कैसे कल्याण होगा, इसमें महाभागवत एकदम स्थिर रहता, भगवान के प्रति विधान में संतुष्ट रहता। सुनते हैं एक कोई संत थे, नौका से जा रहे थे, शाम का समय था, आकाश में बादल गिरा, धीरे धीरे एकदम अंधकार सा हो गया, थोड़े थोड़े बूंदी बांदी भी आरंभ हो गई, और बड़े जोर से आंधी चली, नौका तो पहले छूट गई थी, नौ नदी चौड़ी थी, बीचों बीच में गई और साथ ही साथ में बड़ी जोर से अंधड़ा, नाव डगमगाने लगी, कभी किधर कभी इधर, और नाव में आदमी भरे थे, उसमें महात्मा जी भी बैठे हैं। नाव इधर से पानी में इधर से पानी लेती है, अब फिर इधर करवट बन जाती है। अब गए सबके प्राण सूखे, अब गई नाव, अब गई नाव। महात्मा जी जब देखा जे नाव डूब रही है, तो उन्होंने कमंडलू से जर भल करके और नौका में भरना। लोगों ने कहा क्या ये साधु है न, ये क्या है, नौका एक तो अपने आप डूब रही है और नौका में पानी भर करके दोबारा आए, बड़े लोग सब बिगड़ रहे हैं, किंतु वो अपने सुध में है, वो किसी के तरफ देख नहीं रहे, वो पानी भरते ही चलेगा। भगवान के कृपा से नौका धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, इतने में आकाश छट गए, बादल छट गए, वर्षा भी थोड़ी सी, नौका भी अब किनारे पर लगने वाली, नौका भी अब सीधी हो गई। अब महात्मा जी ने पानी उलीचना आरम्भ किया, नौ मंच लेकर के बाहर पहुंचना। लोगों ने कहा ये पागल है और कुछ नहीं, अरे अब पानी फेंकने क्या जरूरत है, नौका तब लग गई, अब तो डूबेगी नहीं। अंत में महाराज जी से कोई एक श्रद्धालु व्यक्ति ने पूछा जी आप नदी में पानी भरने लगे नौका में, अब फिर उसको खाली कर, ऐसा क्यों? अरे भाई प्रभु की इच्छा थी या नौका डूब जाए, तो मैंने सोचा कि भगवान की इच्छा के लिए हम भी उसका उसकी सहायता कर दे, प्रभु की प्रसन्नता ही सब कुछ है थी, इसलिए जब नौका डूब गए तो मैंने सोचा कि और भी मैं सहायता करते डूबा मुझे डूब जाए, और जब देखा कि प्रभु की इच्छा नहीं है, बादल छट गए, हवा भी बंद हो गई और नौका भी निकट आ रही है, तो देखा कि प्रभु की इच्छा है जब नौका लग जाए, इसलिए मैं पानी भर करके प्रभु की इच्छा, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं अपने प्रभु का गुलाम, उसके इच्छा अनुसार मैंने कहा। ऐसे महापुरुषों को संसार के किसी भी विपत्ति से उद्विग्न नहीं हो, ऐसा ही भजन करने वाला निरुद्योग होकर के वो बतलाया ना, भाव का लक्षण ही नहीं बतलाया, शांति अपर्थ काल, शांति माने क्या, समस्त विश्व की विपदाओं के आने पर भी वो एक निशुद्ध नहीं है, क्योंकि प्रभु तो हमारे अंदर में, वो जो इच्छा करेगा वो होगी और वो होकर के रहेगी, तो क्यों नहीं उसमें प्रसन्न रहा जाए। इसलिए संत लोग भी ऐसे ही, वो सर्वत्र अपने देव को देख, प्रहलाद महाराज जी क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं सर्वभूतेषु यः पश्यत् भगवत भावम् आत्मनः, आत्मनः माने अपना भगवान के प्रति जो भाव देखते हैं, वो देखते हैं कि संसार के सब लोगों में वही भाव है, जैसे नृसिंह देव की आराधना प्रहलाद महाराज पर, वो देखेंगे ये सब लोग नृसिंह देव की उपासना करते हैं, नृसिंह मूर्ति को सर्वत्र देखते हैं। हनुमान क्या देखेंगे, वो देखेंगे सारे विश्व के लोग राम की उपासना कर, सर्वत्र वो राममय सिया राममय, वो इस रूप में देखेंगे, उनकी वो देखने से इष्ट देव की स्तुति होगी। अरे और तो क्या, निर्जीव वस्तु एक मयूर का पंख है उसको, और की तो बात क्या, हम ही लोग जब देखते हैं, यदि मिट्टी में पड़ा हुआ है कहीं नारी और मोरी के पास भी, हम जब भी देख लिया तो क्या करते हैं, झट उठा लेकर के हाथ जुड़कर सिर पर रख लेते हैं। एक तुलसी का पत्ता सूखा हो या कच्चा हो, कहीं भी पड़ा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, झट उठा करके क्यों, कृष्ण लीला की स्तुति होती, कृष्ण की स्तुति। इसलिए महाभागवतों को
जो चल नहीं,
जो चल नहीं सकती है, और जो चलने वाली है वो जंगम, वो चलने वाली, उन सब में अपने इष्ट देव की मूर्ति को देखते हैं, ये शरीर नहीं देखते हैं। ब्रह्मा जी कहीं प्रभात में जा रहे थे, एक सुअर को देखा, सुअर को देखते ही कहा हाय हाय, अरे इंद्र तू कैसे इसमें आ गया गंदे शरीर में, तू हमारे साथ चलो स्वर्ग में। तो दो चार बार करने पर सुअर ने मुंह उठाया उनकी तरफ में, वो अरे तू इंद्र है, तू सुअर नहीं है, तू हमारे साथ में चल। किसी प्रकार से राजी नहीं, बहुत कुछ कहा तब भी राजी नहीं, तो ऐसे नहीं जाए। सुअर के जितने बच्चे थे बच्चों को मारना आरंभ किया, तो वो घिघियाने लग गए, एक एक बच्चा मर रहा है, घिघिया रहे हैं बच्चों के, और वो मार करके ऊपर उठ जाते हैं अंतरिक्ष में, उनको पकड़ नहीं पाता, मारने की चेष्टा भी करता। अंत में जब सब बच्चे मर गए, अब चलेगा तो नहीं, हमारी स्त्री है, फिर बच्चे हमारे जैसे के तैसे पूरे हो जाए। उन्होंने स्त्री को भी पकड़ करके पिछले पैर और मार, अब चलेगा, अरे कितनी स्वरियां जुट जाएंगी, थी मेरी पत्नियां जुट जाएंगी और बच्चे हो जाएंगे, नहीं चलोगे तो नहीं। तो मैंने पानी हाथ में लिया और प्रोक्षण करके उस पर मंत्र पूछ करके होती की चाहते, अरे मैं इंद्र और मैं इस सुअर शरीर में चारों तरफ में टट्टी लगी हुई है, मल मूत्र लगे हुए हैं, और मैं इस तरह से घूम रहा हूं, बच्चों को अपना बेटा और लड़की और इन सुअरियों को अपना मैं पत्नी के रूप में देता हूँ। हाथ जोड़ करके उनके सामने, प्रभु अब आप कृपा करिए, शरीर छूट जाए, अब चले ठीक। पानी खाया, प्रक्षण किया और शरीर छूट गया, और जिन लोगों को विश्वास नहीं है इन कथाओं पर, शास्त्रों पर, वेदों पर, पुराणों में, यदि हम लोग भजन कर रहे हैं कुछ कुछ, किंतु इतनी सभी सामर्थ्य नारद और व्यास या उन लोगों के समान रूप सनातन के समान तो भी नहीं हुआ, या महाप्रभु, या भी वे कौन श्यामानंद के शिष्य रसिकानंद इत्यादि, पानी खाया और हाथ छोड़ दिया लोगों पर, बस
हाथी के ऊपर हाथी,
ऐसा तो नहीं। तो अभी हम लोग प्रश्न करते दिखला दे, ये देखो संसार क्या है और ये भगवान की भक्ति और उसका फल क्या है, ये दिखला दे, किंतु ऐसे हैं लोग दिखला दे, अपना सामर्थ्य या स्वरूप अपना प्रकट नहीं करते। किंतु ये समझो ये कहां, ये घृणित नरक है ये संसार, और कहां अमृत का खान वो बैकुंठ धाम गोलोक वृंदावन है, जहां अमृत ही अमृत, रस ही रस, इस जगत में सुख और शांति का जगह नहीं है, वही हमारा पूर्व स्थान है, वहीं से हम लोग विचित होकर के इसमें आ गए और इसको अपना मान करके उसमें भटक करके चल। तो महापुरुष जो होते हैं, महाभागवत एक हिरण को देखा, हिरण को देख करके वो कहते अरे ये हिरण नहीं, अरे ये तो ये है भरत है, देखा ना। कृष्ण ने एक कैलाश गिरगिट को देखा, जितने लोग थे उन्होंने सोचा कि ये गिरगिट है, और उन्होंने गिरगिट नहीं देखा, यानी ये तो मृग महाराज हैं, हम लोगों के पूर्वज वाले, तो उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने पैर से उनको छू दिया और उनका शरीर से वो अलग होकर के देवता के समान प्रकट होकर के कृष्ण की परिक्रमा की और निकल करके प्रणाम करके और फिर कृष्ण के सामने उनसे वार्तालाप करवाया कृष्ण ने, और अपने पुत्रों को शिक्षा दिया और नातियों को, और इसके बाद उनको अपने स्थान में दी। तो ये महापुरुष लोग होते हैं, प्रत्येक शरीर में हमारा एक रूप है, उस रूप में भगवान लिखते, यदि भगवान नहीं शरीर में रहे, कहीं नहीं रहे, जड़ में या चेतन में, तो वस्तु की सत्ता नहीं हो, उन्हीं की सत्ता से, प्रभु की सत्ता से ही शक्ति सत्ता, मनुष्य जन्म इसीलिए हुआ, उनको पहचानो। शरीर हमारा पति नहीं है, शरीर हमारा पुत्र नहीं है, ये तो मट्टी का एक बस, इसे हमारा इस चीज को रियलाइजेशन कराने के लिए भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया, उसमें बुढ़ापा दिया, युवावस्था में इतना तेज ये शरीर, दिन भर काम करता है, लोगों का प्रभु अपने को समझता है, और वही विश्व विजयी गामा नाम सुना होगा ना, विश्व विजयी गामा जो समस्त विश्व को ये कुश्ती में हराया था और अंत में वो अस्पताल में पड़ा हुआ कराता कराता एक ग्लास पानी अपने हाथ से नहीं पी रहा, ऐसा निर्बल हो जाएगा सबके लिए। जो 10-10 आदमी को पकड़ करके पहाड़ों पर उठाता था, अब वो खुद एक सीढ़ी भी अपने आप नहीं चढ़ पाता, दूसरों उसको एक सीढ़ी इस मकान की सीढ़ी पर चढ़ाते हैं उतारते हैं दर्शन। ये अपने को निर्बल समझे, असहाय समझ करके उस प्रभु का शरणागत हो, इसीलिए ये सब चीजें। तो वो ऐसा ही देखता है, क्या थावर और जंगम को देखता है, पेड़ पौधे और ये सब चीजों को देखता है, पशु पक्षी मनुष्य के शरीर को, किंतु उनके शरीर को नहीं देखता, उसके भीतर आत्मा क्या है उसको वो देखता है। सर्वत्र इष्ट देव स्फूर्त ये सियाराम में सब जग जान करो प्रणाम जोर जुगम। इसका अर्थ हम समझते कि 99% लोग भूल समझते हैं, भूल समझते हैं। रामायण पढ़ते हैं, रामायण में इन चीजों का निराकरण भी दिया गया, तुलसी कृत रामायण में श्रीमद भागवत में इसका निराकरण दिया, किंतु उनके समझ में आता नहीं। बस यही सिया राम सब जग जानी, ओ मैं तो नहीं लेते, सिया राम मैं सब जग जानी, उसको इस तरह से समझना चाहिए, किंतु वो नहीं सब, वो क्या कहते हैं सिया राम सब जग जानी, सिया राम को देख मैं को नहीं समझ पाते, उसको मैं पर विचार करना चाहिए। मैं माने क्या, जैसे जल है, वर्षा हुई यमुना में बाढ़ आई, अभी 4 वर्ष पहले की स्थिति कल्पना कीजिए, इस पार उस पार सब एक हो गया, मथुरा में भी छतों तक पानी पहुंच गया, उधर नीचे की तरफ में यहां तक पानी आने वाला था, ये बहुत ऊंचा टीका के ऊपर है, उधर स्वामी में घाट का भाग सब डूब गया और उधर में चारों तरफ दुर्वासा और ये सब डूब गया, केवल 2-1 पेड़ दिखाई दे रहे हैं बस, पीले पीले केवल। उस समय कहा जाता है कि आज जलमय हो गया, किंतु जहां पानी उतर गया बस पेड़ पौधे सब कुछ जैसे के तैसे निकल आए। तो जब बाढ़ आई उस समय में भी पेड़ पौधे और ये सब चीजें पानी नहीं हो गया, पानी का अस्तित्व रहते हुए भी इन चीजों का भी अस्तित्व था, उसमें थोड़ा सा छिप गए, पानी पानी दिखता रहता। ऐसे ही इस जगत को देखने वाले वे भी महाभागवत लोग सब समय कृष्ण को ही या राम का भक्त राम मैं देखता है, सब समय इनकी स्मृति यही आती, राम की स्मृति कोई भी चीज देखा। जैसे महाप्रभु जी पुरी में उधर में गए, वही कहीं बगीचा मिल गया तो देखा था ये वृंदावन, समुद्र देखा तो माना ये यमुना, ऊंचा किला देखा ये गिरिराज गोवर्धन। यही प्रेम का स्वभाव होता है, अपने इष्ट देव की सर्वत्र ही स्तुति होती है, सब में अपने इष्ट देव को देखता है, अपने में ही दूसरों में भी और समस्त जीवों को भगवान के स्वरूप में देखता है। किस रूप में, ये हमारे इष्ट देव ही इनके आराध्य हैं, इस रूप में। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक और भी उदाहरण के लिए दे रहे हैं, महाप्रभु जी वन लता सर्व आत्मनि विष्णु वैल्यंत इव पुष्प फलाद्या प्रणत भार विटपा मधुधार प्रेम विष्ट तनु बब्रिशुष्म। ये जुगल गीत का श्लोक करे हैं कृष्ण गोचारण करने के लिए वन में, वहां के गोपियां यहां से देख रही हैं घर में रखते हुए, वो अलग अलग घरों में बैठी हुई अलग अलग गोपियों की एक एक अपने अपने जीतों की अलग अलग सभा। गोपियां जब कृष्ण चले गए तो बिना बातचीत के तो रहेंगी नहीं, स्त्रियों का ऐसा स्वभाव ही है, 2 भी रहेंगी 3 रहें वो जरूर बात करेंगे। तो गोपिया बात करें, किसकी बात करेंगे? अपने प्रिय बात करेगी। तो उनका प्रिय कौन है? कृष्ण। कृष्ण की बात करती है, श्याम की ही बात करती है। तो श्याम की बात होने लग गई है। तो कह रही है कि श्याम अपनी सखाओं को लेकर के गोचारण करने के लिए गए। वृक्ष जितने हैं श्याम को देख करके एकदम आनंद में भर गए। उनमें धीरे धीरे कुछ उनमें पुलक होने लगा, उनका शरीर पुलकित होने लगा, आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी और सिर झुका करके और कृष्ण को कोई प्रणाम इत्यादि। दो भाव हैं, एक शुद्ध माधुर्य भाव और एक है ऐश्वर्य भाव युक्त उनका दर्शन। यहां गोपियों के भाव में शुद्ध माधुर्य भाव, कोई जिनमें कोई भगवत भाव है वो देखेंगे क्या? साधारण वो देखेंगे। पंखा भी चला दो। जो साधारण साधक है वो तो कुछ नहीं देखेगा, जो भावुक भक्त और महाभागवत हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार, एक ऐश्वर्य भाव और एक माधुर्य भाव। माधुर्य भाव माने गोपी हो जाए। जो ऐश्वर्य भाव वाले देखेंगे, जो उनके अंदर में विष्णु है, नारायण है, या कृष्ण भी नारायण है और उनमें षड़ैश्वर्य है, पेड़ पौधे जितने हैं सब उनके दास। पेड़ पौधे को पेड़ पौधा ना देख करके वो सोच रहे हैं ये कृष्ण के सखा है, ऐश्वर्य भाव, या उनके दास हैं। जब कृष्ण को उन्होंने देखा तो माने अपने भावों की अपनी व्यंजना करने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए उन्होंने वो जो पुष्प है ना, पुष्प माने अपने हाथों से, हाथों में पुष्प की वो भर दिया, अंजलि भर, माने उनकी डालें छूट गई जो फूलों से नदी हुई है और कृष्ण जा रहे हैं उनके चरणों पर वो पुष्पांजलि। ये मान लीजिए सब भक्त हैं और कृष्ण को भगवान समझ करके आराधना कर रहे हैं, पुष्पों की डाली उनके चरण और आंखों से आंसू की धारा बह रही है अपने इष्ट देव को देख करके। अब रहा नहीं गया, भाव में विभोर हो गए और साथ साथ में पुलकित हो गए। पुलकित माने क्या? फूल खिल गए। पुलकित माने वो नए नए पत्रों का अंकुर होने लगे। किसी समय क्या अभी अंकुर और किसी का अंकुर, वो जो कलियां है ना फूलों की, वो कलियां थोड़ा सा अब कलियां अंकुरित होने लगी। पहले तो गोल से कड़े के रूप में रही और फिर धीरे 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 इसमें से अगला भाग थोड़ा सा
फूलने,
वो अंकुर जैसे। तो ये सब सारे शरीर में उनका अंकुर और मधु की धारा गिरने माने क्या है? आंखों से प्रेम की धारा। ये तो साधारण भक्तों का जो महाभागवत है वो कौन से सनक सनंदन सनातन इत्यादि प्रहलाद महाराजा भीष्म पितामह इत्यादि लोग इस रूप में देखें और गोपियां किस रूप में देख रही हैं? बना लता करवो आत्मनि विष्णु माने कृष्णम व्यंजन तो पुष्प फला गोपियां कह रही है देख रही। ओ, हमारे जैसे जी आज हम इनके दिलन में होंगे और कृष्ण जैसे मिल जाते हैं, मिल गए तो अपने भावों को भी व्यंजना करने के लिए अभिव्यक्त करने के लिए मानो आज ये पुलकित और रोमांचित होकर के आंखों से इनकी धारा मानो ये फूल फलों से एकदम लग गए। अपने कांत को देखा, ये कांत भाव से देखो, ये वृक्षों को भी देखेंगे किस रूप में, ये कांताएं हैं, हम जैसे कृष्ण की कांताएं हैं, वो गोपियां हैं, ऐसे ये जितने भी लताएं हैं पुरुषों को नहीं देखा, लताओं को देखा अपने, और उनके पतियों को अर्थात वृक्षों को उनको पति के रूप में देखा, जैसे एक हिरणी को गोपी देखती है, देखकर क्या करती है, हाय मैं हिरणी हूं, और हिरणी होती तो क्या होता, हमारा पति जो हिरण है कौन, कृष्ण सार हमारे पीछे चलता है, अरे तुमको कोई भय नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मैं तो हूं ना, चलो देखो कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, हम नेत्र से एक गोपी देख रहे हैं, और हिरण को उसका अनुगामी बतला रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है किस पर, हिरणी पर, अपना और उस दोनों का भाव एक समान बना रहे, अपने जैसा भी, इसलिए पुरुष में तो आरोप होगा नहीं, स्त्री जाति में आरोप, इसलिए हिरणियों को अपने समान, हो कितनी ये धन्य है, ये बिना किसी विघ्न बाधा के कृष्ण के निकट पहुंच जाते, और प्रणय की भिक्षा मानो आंखों से कृष्ण से मांग रही, और उनका पति पीछे पीछे रहता है, कोई चिंता की बात नहीं, डरो मत, लज्जा की बात नहीं, मैं तुम्हारे पास पास हूं, कितना इंसाफ होगा, और हमारे पति कैसे हैं, हमारे ठीक, यदि सुन लिया इसने श्याम को देखा है, कहां थी तू, पैर छोड़ देंगे, यदि फर्ज से कही उसको देंगे, दस देगा तो वो काला नाग है, तू जानती नहीं, आईंदे से घर से मत निकलना, कहां गई थी, श्याम को देखने के लिए गई, बस उनकी यही, तो ऐसे याद यहां पर ये गोपियां करें, लताओं को पहले कहा वन लता, और तरुओं को देखा उनके पति के रूप में, और इन लताओं का प्रेम देखा अपने जैसा ही मधुर भाव कृष्ण के प्रति, और वो कह रहे थे अपने भावों को व्यंजना करने के लिए ये पुष्प और फल इत्यादि ये नहीं है, तो प्रेम का भाव है, अंकुर इत्यादि जो निकल रहे हैं, नए नए पत्ते और कलियों का जो ये निकल रहा है, ये सब अंकुर, अंकुर माने यहां का ये, जहां कृष्ण की कथा सुनने से कोई तुझे भक्त लोग होते हैं पुलकित हो जाते हैं, आज आपने प्रियतम कृष्ण को देखकर के ये पुलकित हो रहे हैं, भाव से ये फल क्या है, प्रेम रूपी फल है, आज ये पुष्पित और फलित हो गई, फलित हो गई, फल से युक्त कृष्ण के सामने उसका उपहार दे रही, अपने हृदय को मान दे रहे, और रो रही है किस लिए, प्रियतम को लेकर के अब्रहान दिया, प्रेम के साथ में सुख पूर्वक ये रोने लगे, प्रण धार विपा मधुधारा प्रेम रहिष्ट तनोलोको, कितना ये सौभाग्य लताओं को देकर, आ इनके साथ में ये वृक्ष भी, वो लताएं कैसी हैं, वृक्षों को लपेट करके ऊपर तक से लिए, मानो पत्नी ने पति का आलिंगन करते हुए भी कृष्ण को देख करके प्रेम में भर गई, और ये भूल गई है हमारे पति को हमने अंक में भर रखा, तभी कृष्ण से प्यार, इस तरह से ये कौन कर रही है, गोपियां, अरे पेड़ में वो भाव है न लता में वो भाव है, वो तो अपने आप फल फूल रही है, तीन तीन की ऐसे ही भावना, तो ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं ये मेरा गुण नहीं, मैं तो वही गौर हूं और ये सन्यासी हूं, क्या चैतन्य कृष्ण मेरा नाम है, मैं वही सन्यासी हूं, मैं पहले जैसा था वैसा ही हूं, किंतु आप जो ये देख रहे हैं विशेषता हमारे वजह से नहीं, अपने कृष्ण प्रेम की वजह से सर्वत्र आपकी इष्ट देव की मूर्ति कृष्ण की पूर्णा हो रही है, मेरे अंदर में कृष्ण और सामने नजर कहां से राधा जी को आपने देख लिया, मैं उनकी कांति से उद्भासित हो रहा हूं, ये भी आपने कैसे देख लिया, राधा कृष्ण तुम्हारे महा प्रेम जहां तहां राधा कृष्ण तुम्हारे पूरा, जहां तहां ये राधा कृष्ण की तुम्हारी स्थिति हुई, एक किरण जा रहा था, क्या देखा ये कृष्ण के फिर हमने किसी की तरफ नहीं जाना, ऐसे ऐसे सब कोई भी चीज हो बस उसी की भावना। रात है प्रभु तुम्हें क्षण भाव चुरी मोर आगे जरूर ना करो चुरी। महाप्रभु जी को कारण रह रमन प्रभु अपनी चतुराई चतुराई और धूर्तता या मेरे साथ में धूर्तता कपटता आप मत करें और अपने भावों की चूरी करके हमसे मत छिपाओ अपने को। क्यों? अरे मैं भी तो कौन हूं, हमारे यहाँ की चोरी नहीं चली। राधिकार भाव कांति करी अंगीकार निजल सरस्वती करिया क्षमता। आपको कृष्ण ही है देखा, कृष्ण रूप में आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, आपने सब प्रकार के रसास्वादन किए प्रेम का विषय बनकर, और गोपी सखा माता पिता दास इत्यादि के रूप में वो लोग सब इसके आश्रय हैं प्रेम के। पांच प्रकार के आश्रय हैं, सांग दासत्व बात्सल्य और पांच प्रकार के आश्रय, पांच प्रकार से ही कृष्ण की सेवा की जा रही। इसमें से कह रहे हैं कि आप जब तक ये चाहते थे ये राधिका जी को हमको देख करके इतना आनंद क्यों होता है, जो लोग हमको दर्शन करते हैं सबसे अधिक आनंद किसको अनुभूति होती है? राधिका जी, सबको होता है किंतु एक पशु पक्षी की पतंगों को कृष्ण को देखने से होता है, किंतु सबसे अधिक होता है राधिका। क्यों? इसलिए कि उनमें महाभाव की अवस्था है, मादन मूल और किसी में है नहीं। कृष्ण ने सोचा ये मादन भाव हमको हमारा राधिका वाला हमारे अंदर में है, तो मैं समझ सकता कि मैं कितना मधुर कितना सुंदर हूं, राधिका जी को क्या सुख होता है, तब मैं समझता जैसे मुझको क्या देख करके उनको क्या सुख। ये सब चीजें उनका माधुर्य हमारा कैसा है ये सब चीजें मालूम। इसलिए राधिका जी का रूप और भाव दोनों को चूरी किया, चूरी किया मैंने क्या, राधा जी को जानने नहीं दिया और उनके भावों को ग्रहण किया। इच्छा तो थी किंतु ग्रहण नहीं कर सकते थे। ग्रहण कब हुआ? जब रामानंद से वार्तालाप हुआ और रामानंद ने उनको वह भाव दिया महाभाव, उनमें संकेत कराया, तब ये इनको ये भाव था। इसके बाद में पुरी में आए और कमीरा में रहकर के सब जब तक कि गोपी भाव नहीं होगा इनको समझना बड़ा था। इसलिए कृष्ण को जब समझना हुआ ना, शंकर जी को तो छोड़ दीजिए जो गोपी हुए उनके तो समझ में गोपी भाव आने पर भी नहीं, तो गोपी रूप होने पर भी, किंतु कृष्ण जी ने राधा जी का भाव भी लिया। क्या भाव? मैं ब्रज में कृष्ण भानु महाराज की कन्या हूं। अब इसको इस रूप में से राधा भाव करने से ऐसे नहीं, मैं कृष्ण भानु महाराज की मैं किशोरी गोपी हूं, हमारा विवाह जावट में हुआ, मैं नंद नंदन के पुत्र पर आसक्त हूं, वही हमारा प्रेमी है, वही हमारे यतन है, मैं लुक छिप करके मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानती, और कृष्ण को की सेवा सबसे अधिक वही करती है। परम सुंदरी है, रूपवती है, गुणवती है, उदार है, समस्त गुणों की आदर और उनमें महाभाव तक है, इसलिए इस भाव को चोरी करके तब कृष्ण में कितना माधुर्य है ये कृष्ण तब समझ। ये लोग क्या हुआ, कहीं कथा आती है कभी नंद भवन में बच्चे स्थिति में हाथ में मैया ने मक्खन दे दिया, दाहिने हाथ में मक्खन ले लिए हैं, खाने को हैं, खा रहे हैं और एक खंभा में अपने हाथ को ऐसे कर मुनि और उसी को और अपनी छाया उस मणि स्तंभ में दे दी। देखते देखते देखा जी इस खंभे के अंदर में पास ही में एक लड़का खड़ा है, हमारे जैसे ही श्याम रंग, हाथ में मक्खन दिया है। उन्होंने इस बच्चे से मित्रता करने के लिए उन्होंने वो मक्खन उसको देना है, तो वो दे रहे हैं, तो वो भी छाया जो थी वो भी देने लगे। तो देखा जैसे ये भी हम जैसा करते हैं हमारा अभिनय कर रहा है। तो उन्होंने बंदर घूटी उस बच्चे को, तो उस बंदर बच्चे ने भी बंदर घूटी उसको। इतने में यशोदा जी पासी में थी, देखे ये क्या कर रहा है, किसको देख रहा है, किसको बंदर घूटी दे रहा है। उन्होंने देखा जी हमारा ये तो अपना ही बच्चा अपनी छाया देकर के ऐसा कर खेल रहा है। बंधक लज्जित होकर के उनकी गोदी में आ गए और उनके अंदर से अपने उनके अंदर में ऐसी ही राधिका भी हमारे रूप का जैसा अनुभव करती है, उस रूप को ऐसा अनुभव करना चाहता, इसीलिए चैतन्य महापुरुष के रूप में जो है। तो ये निज गुण कार्य कुमार प्रेम आस्वादन अनुसंगे प्रेम आपने उसी भाव से लिए लिया, दोनों का मिश्र राधा और कृष्ण, उनका आत्मा स्वयं तो कृष्ण है, राधा जी की भाव और शांति को ग्रहण करके आज विश्व को उस प्रेम से आनंद भाव से डुबा रहे हैं और स्वयं उसका आत्मा आज भी अगले दिन इसके और तब यही समझिए सबसे उन्नत भाव है शांत दास सख्त बात कर ले, और इनमें भी सबसे उन्नत है मधुर भाव गोपियों का। जब इस मनुष्य जीवन में हम लोग उसी भाव को ग्रहण करने के लिए आए, पर ये हम लोग को कैसे पा सकते। अरे जब कृष्ण ने दया करके मथुरा वृंदावन में किसी प्रकार से जन्म या किसी प्रकार का संबंध दे दिया, तो जरूर हम लोग इसके अधिकारी हैं, जरूर हम लोग इसको पाए। थोड़ा सा साधन तो करें, विघ्न बाधाएं आएंगी। विषमित तपस्या कर रहे थे ना, 100 वर्ष की तपस्या पर बैठे थे, देवताओं से देखा नहीं गया, तो क्या किया उन्होंने, उर्वशी को भेज दिया, पैर फिसल गया। हाँ है, अब तब तक नहीं समझे, जब पैर फिसल गया उनका एक पैर टूट गया, हाँ है पैर क्या करने जा रहा था, क्या होगा। ऐसे ही विपत्तियां आएंगी, तरह तरह की बाधाएं आएंगी, किंतु हम नाथ की सिद्ध में ठीक चलेंगे। गुरु वैष्णव का संग कभी नहीं जीवन में जन्मांतर में नहीं छोड़ेंगे, मथुरा वृंदावन को भी नहीं छोड़ेंगे जब तक यह प्रेम हमको प्राप्त नहीं। और विपत्तियां आते रहे क्या, ऐसा संकल्प दृढ़ पदक्षेप के साथ हम लोग आगे बढ़े, जरूर कृष्ण का मिलना दूर नहीं, जरूर मिलेंगे। पंचाकल्प पूरा।